आगे सबक देखिए भाई, बाबु शहादती अल जिना व रुजूई अनहा قال وإذا شهد الشهود بحد متقادم لم يمنعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل شهادتهم إلا في حد القذف خاصة وفي الجامع الصغير وإذا شهد عليه الشهود بسرقة أو بشرب خمر أو بزنا بعد حين لم يؤخذ به وضمن السرقة। भाई गुज़श्ता सबक में साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया था कि अगर कोई आकिल बालिग मर्द किसी मजनूना या सगीरा के साथ जिना कर ले तो इस बालिग मर्द पर हद जिना जारी की जाएगी, जबकि इसके मुकाबले में अगर कोई बच्चा या मजनून किसी बालिगा औरत के साथ जिना करे और वो औरत अपनी रजामंदी से उनको कुदरत दे तो इस सूरत में न उस बच्चे और मजनून पर हद आएगी और न उस औरत पर हद आएगी। और उसकी वजह बतलाई थी साहिब हिदाया ने कि वजह यह है कि जिना असल में मर्द का फेल है, इसीलिए मर्द को जानी और वाती कहा जाता है, यानी मर्द के लिए इसमें फाइल का सिगा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि औरत को मौतुआ और मजनिया कहा जाता है, यानी उसके लिए इसमें मफूल का सिगा इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कभी औरत को जानिया कहा भी जाए तो ये उसको मजाजन जानिया कहा गया है, और वजह इसकी ये है कि औरत जो है वो जिना का सबब बनी है, तो इस एतबार से उसको जानिया कहा गया मजाजन। यह इस वजह से कि अरबी जुबान में कभी कभार मफूल पर भी इसमें फाइल का लफ्ज बोल दिया जाता है, जैसे फी ईशति राजिया, असल में ये फी ईशति मर्जिया के माना में है भाई। तो लिहाजा जब बच्चे और मजनून को एक आकिला बालिगा औरत ने अपनी रजामंदी से उनको अपने ऊपर कुदरत दी तो ये बच्चे और मजनून का फेल जीना नहीं, इसलिए क्योंकि जीना जो है उससे तो शरीयत ने मना किया है और उसका करने वाला गुनाहगार होता है, और बच्चे और मजनून के फेल में तो ये सिफत नहीं, वो तो शरीय अहकाम के मुखातब ही नहीं है और वो इस फेल के करने पर गुनाहगार भी नहीं है, तो लिहाजा मजनून और बच्चे का ये फेल जीना नहीं। तो औरत ने इनको जो अपने ऊपर कुदरत दी है ये इसने जीना की कुदरत नहीं दी, तो इसलिए ना बच्चे और मजनून पर हद आएगी और ना औरत पर हद आएगी। जबकि इसके मुकाबले में अगर मर्द जो है मजनूना या सगीरा के साथ जीना करता है तो मर्द का फेल तो जीना ही है, लिहाजा उस मर्द पर हद जारी होगी भाई। और फिर उसके बाद साहिबे हिदाया ने इकराह का मसला जिक्र फरमाया था, आपने पढ़ा कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक अगर इकराह करने वाला बादशाह है तो फिर इस सूरत के अंदर ये इकराह मुअतबर है, तो बादशाह ने किसी को जिना पर मजबूर किया तो इस शख्स पर हद नहीं आएगी, जबकि इसके मुकाबले में अगर बादशाह के अलावा कोई और इकराह करे तो इमाम साहब के नजदीक ये इकराह मुअतबर नहीं, लिहाजा इस सूरत में अगर ये शख्स जिना करता है तो इस पर हद जिना जारी की जाएगी। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि इकराह चाहे बादशाह की तरफ से हो या किसी और की तरफ से, हर इकराह मुअतबर है। जब इकराह मुअतबर है तो जिना करने वाले की रजामंदी ना पाई गई, और जब जिना करने वाले की रजामंदी ना हो तो उस पर हद जिना जारी नहीं की जा सकती। जबकि इमाम जुफर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इकराह चाहे बादशाह की तरफ से हो चाहे किसी और की तरफ से, इसका कोई एतबार नहीं है, लिहाजा जिना करने वाला अगर जिना करेगा तो फिर उस पर हद जिना जारी की जाएगी। इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं वजह यह है कि जिना के लिए इंतिशार आला जरूरी है, और इंतिशार आला जो है ये दलील है इस शख्स की जिना पर रजामंदी की, तो जब ये शख्स जिना पर राजी है तो इस पर हद जिना जारी की जाएगी। और इब्तिदा में इमाम साहब की भी यही राय थी, लेकिन फिर बाद में इमाम साहब ने इसे रुजू फरमा लिया, वजह यह कि इंतिशार कभी तबअन भी होता है तो लिहाजा वो रजामंदी की अलामत नहीं। अलबत्ता बादशाह के इकराह का मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी और के इकराह का मुकाबला किया जा सकता है, लिहाजा बादशाह का इकराह तो मोतबर है, किसी और का इकराह मोतबर नहीं, जबकि साहिबैन के नजदीक हर एक का इकराह मोतबर है। और फिर उलमा ने जिक्र किया कि दरअसल ये इमाम साहब और साहिबैन का जो इख्तिलाफ है ये कोई दलाइल का इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि दरअसल ये जमाने का इख्तिलाफ है। इमाम साहब का जमाना ऐसा था कि उसके अंदर बादशाह के अलावा किसी और की तरफ से इकराह का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था, और साहिबैन के जमाने में बादशाह के अलावा किसी और की तरफ से भी इकराह का तस्वुर किया जा सकता था। तो चूंकि जमाना मुख्तलिफ था तो हर एक ने अपने जमाने के मुताबिक मसला बयान फरमाया। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने बतलाया था कि इजराए हद के लिए जानी और मजनिया दोनों का जिना पर इत्तेफाक जरूरी है। अगर दोनों में से एक भी कह दे कि हमने तो निकाह किया था तो इसकी वजह से शुबा आ जाएगा कि हो सकता है ये सच बोल रहा हो, और अदना शुबे से भी हद साकित हो जाएगी, लिहाजा ये हद भी इस पर से साकित हो जाएगी भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर एक शख्स ने एक बांदी से जिना किया और फिर इसी फेले जिना से उसको कत्ल कर दिया तो इस सूरत में इसके दो जुर्म हैं, एक इसने जिना किया है लिहाजा इस पर हद जारी की जाएगी, और दूसरा इसने कत्ल किया है लिहाजा इस पर बांदी की कीमत आएगी बतौर जमान के। और मैंने बतलाया कि आपके जहन में यह ना आए कि बांदी को कत्ल किया है लिहाजा इसको भी किसास में कत्ल किया जाए। मैंने आपको बतलाया था कि किसास में सिर्फ उस वक्त कातिल को कत्ल किया जाता है जब उसने आलाय कत्ल के साथ दूसरे को कत्ल किया हो, और आलाय कत्ल यानी जो बना ही कत्ल के लिए है, जैसे बंदूक तलवार वगैरह भाई। तो लिहाजा किसास सिर्फ आला कत्ल से कत्ल करने की सूरत में आता है, इसके अलावा कत्ल किया जाए तो वहां फिर दियत आया करती है, आजाद मर्द या औरत हो तो वहां दियत आया करती है, और यह चूंकि बांदी है तो लिहाजा इसकी कीमत इस शख्स पर वाजिब होगी। तो तरफेन के नजदीक ये शख्स जिसने जिना के जरिए बांदी को कत्ल कर दिया इस पर हद भी जारी की जाएगी और इस पर बांदी की कीमत भी वाजिब होगी। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि बांदी की कीमत का जमान जब इस आदमी पर आ गया तो अब इस पर हद जारी नहीं की जा सकती, इसलिए क्योंकि जाबता है कि हद के कायम होने से पहले अगर सबबे मिल्कियत आ जाए तो फिर उस शख्स पर हद जारी नहीं की जाती। जैसे कोई शख्स चोरी कर ले और उसका जुर्म काजी के पास भी साबित हो गया और काजी ने भी उसका हाथ काटने का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन हाथ काटने से पहले पहले उस चोरी शुदा माल का जो मालिक था उसने चोर को यह माल हिबा कर दिया, चोर को उस माल का मालिक बना दिया। तो यहां पर देखो हद जारी होने से पहले सबबे मिल्कियत पाया गया, चोर उस माल का मालिक बन गया, तो बिल इत्तेफाक इस पर से हद साकित हो जाती है। तो यहां पर भी ये जब बांदी की कीमत का जामिन होगा तो सबबे मिल्कियत पाया गया हद कायम होने से पहले, लिहाजा इस पर से हद साकित हो जाएगी। जबकि तरफैन फरमाते हैं कि इस शख्स पर जो जमान आएगा यह जमाने कीमत नहीं है बल्कि यह जमाने कत्ल है। वजह यह है कि जमाने कीमत की वजह से दूसरा शख्स उस चीज का मालिक बन जाता है, जबकि यहां पर तो बांदी हलाक हो चुकी है और हलाक शुदा बांदी वो तो अब महल्ले मिल्कियत ही नहीं है। मालूम हो यह जमाने कीमत नहीं है बल्कि जमाने कत्ल है। और अगर आपकी बात मान ली जाए कि यह जमाने कीमत है तो फिर इस सूरत में भी यह बांदी हलाक हो चुकी है और वो जो इसने जिना किया था वो तो बांदी की हलाकत से पहले किया था, वो यानी बांदी के मनाफे इसने बांदी की हलाकत से पहले वसूल कर लिए थे, तो लिहाजा वो मनाफे तो मादूम हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, लिहाजा उनके अंदर इसकी मिल्कियत को साबित नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बतलाया था कि एक होती है ऐन और एक है अरज। ऐन जात को कहते हैं और अरज उसकी सिफत को कहते हैं, और हमारे उलमा फरमाते हैं कि जो अरज है इसके अंदर बका नहीं, सिफात के अंदर हर हर लम्हे के अंदर तजद्दुद होता है। मसलन ये चीजों का जो रंग आपको नजर आ रहा है ये इनकी सिफत है, तो इस सिफत के अंदर हर हर लम्हे के अंदर तजद्दुद हो रहा है। एक लम्हे में आपको जो रंग नजर आ रहा है अगले लम्हे में वही रंग नहीं है, वो रंग पहली सिफत खत्म हो चुकी उसकी जगह नई नई सिफत आ गई। इसी तरह हर हर लम्हे में नई नई सिफत आ रही है और पहली सिफत मादूम होती जा रही है। इसकी ज्यादा बेहतर वजाहत जो है, मसलन एक शख्स जो है किसी को अपना मकान किराए पर देता है। अब देखो ये मकान की जात यानी ऐन का मालिक नहीं बनाता दूसरे को, बल्कि मकान के जो मुनाफिया हैं वो उनका मालिक बना रहा है, और मुनाफिया जो है वो तो सिफत है, उनके अंदर बका नहीं। तो लिहाजा आप खुद देख लें, कोई शख्स ऐसा नहीं कर सकता कि पूरा साल अपने मकान को किराए पर न दे और वो रिहाइश जो है उसको जमा करता रहे और फिर इकट्ठी एक महीने के अंदर वो 12 महीनों वाली रिहाइश किसी को दे दे। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है रिहाइश गुजरती जा रही है, तो लिहाजा मालूम हुआ मुनाफिया के अंदर बका नहीं है। तो यहां पर भी इस शख्स ने जब बांदी के साथ जिना किया तो मुनाफिया वसूल किए और मुनाफिया के अंदर बका नहीं, वो मुनाफे गुजर गए और फिर इसी फेले जिना से बांदी हलाक भी हो गई। तो इस शख्स पर जमाने कीमत आएगा, इसकी निस्बत की जाएगी जिस वक्त इसने बांदी को हलाक किया था। तो जिस वक्त हलाक किया था गोया उस वक्त से यह बांदी का मालिक हुआ, लेकिन बांदी की हलाकत से पहले तो यह जिना कर चुका है, वो मुनाफे तो वसूल कर चुका है, तो लिहाजा वो मुनाफे जो मादूम हो चुके हैं वहां पर इसकी मिल्कियत को साबित करार नहीं दिया जा सकता कि यह उन मुनाफे का मालिक था, क्योंकि वो मादूम हो चुके हैं। तवज्जो है। तो यहां पर मुनाफे भी मादूम हो चुके हैं और यह बांदी भी हलाक हो चुकी है। अगर बांदी जिंदा होती तो फिर हम बांदी के अंदर मिल्कियत साबित करते, तो अरज जो है वो तो ऐन के ताबे होती है। तो जब ऐन बाकी होती तो उसके अंदर मिल्कियत साबित होती और ऐन के ताबे करते हुए हम मुनाफे के अंदर भी मिल्कियत मान लेते। ऐन अगर बाकी होती, वो बांदी अगर जिंदा होती तो बांदी के अंदर हम मिल्कियत मान लेते और जो मुनाफे थे वो मादूम हो चुके हैं, लेकिन हम ऐन के ताबे करते हुए उन मुनाफे को भी बाकी मान लेते और उनके अंदर भी मिल्कियत साबित कर देते। लेकिन बांदी तो हलाक हो चुकी है, जब बांदी हलाक हो चुकी है तो बांदी के ताबे करते हुए भी हम उन मुनाफे पर बाकी रहने का हुक्म नहीं लगा सकते। जब मुनाफे पर बाकी रहने का हुक्म नहीं लगा सकते, वो तो मादूम हो चुके हैं, तो उनमें मिल्कियत भी साबित नहीं हो सकती। जबकि इसके मुकाबले में अगर एक शख्स ने एक बांदी से जिना किया और उसको अंधा भी कर दिया, तो अब यहां पर इस शख्स पर बांदी का जमान आएगा भाई, और इस बांदी का जब जमान इस पर आ गया तो अब इस पर हद जिना जारी नहीं होगी। वजह यह कि अगर जब बांदी अंधी हो गई है लेकिन उसकी जात तो बाकी है, तो जब इस पर जमाने कीमत आया तो बांदी के अंदर यह मालिक बन गया, और बांदी का मालिक उस वक्त से बना जिस वक्त इसने बांदी को अंधा किया था, और तो उस वक्त वो जिना तो कर चुका है लेकिन जात तो इस वक्त बाकी है, तो जात के ताबे करते हुए मुनाफे को भी बाकी करार दे दिया जाएगा। जी। जात के ताबे करते हुए मुनाफे अगरचे गुजर चुके हैं लेकिन बहरहाल जात तो है, मौजूद है, तो जात के ताबे करते हुए मुनाफे को भी बाकी करार दे दिया जाएगा और मुनाफे के अंदर भी इसकी मिल्कियत साबित कर दी जाएगी। गोया इसने अपनी ही बांदी से सोहबत की थी, इसने कोई फेले जिना किया ही नहीं है, लिहाजा इस सूरत में इस शख्स पर हद जिना नहीं आएगी। जबकि यह बांदी जो हलाक हो चुकी है इसके अंदर ऐन बाकी नहीं, तो उन मुनाफे में भी मिल्कियत साबित नहीं की जा सकती जो गुजर चुके हैं। भाई बात समझ में आ गई। और फिर उसके बाद साहिबे हिदाया ने बतलाया था कि अगर बादशाह या खलीफा जो है वो अगर कोई ऐसा फेल करे जिसकी वजह से हद वाजिब होती हो तो उन पर हद वाजिब नहीं होगी भाई, इसलिए क्योंकि वहां पर कोई हद को वसूल करने वाला नहीं है और बादशाह खुद भी अपने ऊपर कभी हद जारी करने को बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि ये तो जिल्लत और रुसवाई का बाइस है उसके लिए। तो लिहाजा इस बादशाह पर हद वाजिब ही नहीं। हां अलबत्ता अगर ये किसी को कत्ल करता है या किसी का माल छीन लेता है ये बादशाह, तो फिर इस पर इससे किसास का मुतालबा भी किया जा सकता है और इससे उस माल का मुतालबा भी किया जा सकता है, वो इससे लिया जा सकता है। भाई बात समझ में आ गई। भाई अब आइए आज के सबक पर। बाब शहादति अला जिना व रुजू अनहा, ये बाब है जिना पर गवाही के बयान में, व रुजू अनहा और उस गवाही से रुजू के बयान में। इस बाब के अंदर जिना से मुतालिक जो गवाही है उससे मुतालिका मसाइल जिक्र फरमाएंगी कि किन किन सूरतों में गवाही कबूल नहीं की जाएगी, और अगर कोई गवाही से रुजू कर लेता है कोई गवाह तो फिर उसका क्या हुक्म है वो साहिब हिदाया बयान फरमाएंगे। लेकिन एक तो कीमती बातें याद रखना, याद रखो गवाह के रुजू करने का मतलब यह है कि वो कह दे मैंने झूठी गवाही दी थी या मुझसे गलती हो गई इस गवाही के अंदर। और गवाह का रुजू तब ही मोतबर है जब वो काजी के सामने रुजू करे। भाई उस गवाह ने गवाही काजी के सामने दी थी तो रुजू भी काजी के सामने ही मोतबर है। अगर किसी और के सामने ये रुजू करता है ये गवाह तो वो रुजू मोतबर नहीं। तो पहला जाब्ता क्या कि गवाह का रुजू तब ही मोतबर है जब वो काजी के सामने हो। दूसरी कीमती बात यह याद रखना कि जब गवाही पर काजी एक दफा फैसला कर दे तो फिर बाद में अब गवाह रुजू भी कर ले तो काजी का फैसला वापस नहीं होगा। भाई काजी का फैसला एक दफा गवाही पर हो चुका है, अब गवाह के रुजू करने से वो फैसला नहीं टूटेगा, भाई वो फैसला खत्म नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाएगा? कहते हैं इस सूरत में अगर इस गवाही की वजह से किसी का नुकसान हुआ है तो गवाह पर जमान आ जाएगा, अब उसको जमान देना पड़ेगा। मसलन एक आदमी ने जैद पर दावा कर दिया कि इसने मेरा 1,00,000 रुपया देना है और दो गवाहों ने गवाही दे दी काजी के सामने कि वाकई इस शख्स का जैद पर 1,00,000 रुपया है। काजी ने फैसला कर दिया तो अब जैद को 1,00,000 रुपया देना पड़ेगा। और बाद में फिर गवाहों में से कोई एक काजी के सामने आकर रुजू कर लेता है तो काजी का फैसला नहीं खत्म होगा बल्कि इस गवाह की वजह से जितना जैद का नुकसान हुआ है वो जमान अब इस गवाह को देना पड़ेगा। मसलन अगर सिर्फ एक गवाह ने रुजू किया है तो फिर दो गवाहों की वजह से जैद का नुकसान 1,00,000 हुआ था तो एक गवाह की वजह से गोया 50,000 नुकसान हुआ है तो सिर्फ एक गवाह रुजू करेगा तो उस पर 50,000 जमान आ जाएगा, और अगर दूसरा भी रुजू कर लेता है तो फिर उस पर भी 50,000 जमान आ जाएगा। मालूम हो रुजू सिर्फ काजी के पास मोतबर है, और दूसरा रुजू अगर फैसले के बाद होगा तो फैसला खत्म नहीं होगा बल्कि सिर्फ इन गवाहों पर जमान आ जाएगा। भाई जी देखिए भैया अब किताब पर कहते हैं बाबू शहादत अल जिना व रुजू अनहा, ये बाब है जिना पर गवाही के बयान में व रुजू अनहा और उस गवाही से रुजू के बयान में। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं व इदा शहीदा शुहूद बी हदिम मुतकादिम लम यमनाहुम अन इकामतिही बुअदुहुम अनिल इमामी लम तुकबल शहादतुहुम। भाई याद रखो हुदूद के मसले में अगर गवाही पुरानी हो जाए तो फिर गवाही कबूल नहीं की जाएगी। हुदूद का मसला बड़ा नाजुक है भाई, तो वो हुदूद जो खालिस अल्लाह का हक हैं उनके अंदर अगर गवाही पुरानी हो गई तो फिर गवाही नहीं सुनी जाएगी। और वो कितनी मुद्दत है जिसको ज्यादा जमाना कहा जाएगा और गवाही नहीं सुनी जाएगी? तो याद रखो सही कौल के मुताबिक वो 1 माह की मुद्दत है। अगर जिना को 1 महीना गुजर चुका है तो मालूम हुआ बात पुरानी हो गई, अब काजी इन गवाहों की गवाही नहीं सुनेगा। जबकि बस फुकहा फरमाते हैं कि वह मुद्दत 6 महीने है, जिना के बाद अगर 6 महीने गुजर चुके हैं तो फिर इन गवाहों की गवाही नहीं सुनी जाएगी। लेकिन मैंने बताया सही कॉल जो है वो 1 माह की मुद्दत है, 1 माह गुजर गया तो बात पुरानी हो गई लिहाजा अब काजी इनकी गवाही नहीं सुनेगा। भाई और ये भी याद रखना ये उस सूरत में है जब गवाह जो हैं वो ज्यादा दूर नहीं रहते, और अगर गवाह दूर के इलाके में रहते हैं कि वहां से आते आते ही 1 महीना लग गया है तो फिर इस सूरत में ये उजर है लिहाजा इस सूरत में इनकी गवाही सुनी जाएगी। तो अगर काजी से दूर होने की वजह से ताखीर हुई है फिर तो गवाही सुनी जाएगी, और अगर दूर नहीं है करीब हैं फिर भी इन्होंने बिला वजह इतनी ताखीर कर दी तो फिर गवाही नहीं सुनी जाएगी। तो काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं व इदा शहीदा शुहूद बी हदिम मुतकादिमिन, और जब गवाह गवाही दें बी हदिम मुतकादिमिन, मुतकादिम का माना है पुराना, भाई पुराना, यानी जिसमें ज्यादा जमाना गुजर चुका हो। वह ईदा शहीदा शुहूदू, और जब गवाह गवाही दें, भी हद दिन मुतकादिमीन, ऐसी हद की जो पुरानी हो चुकी है, और लम यम नाहुम अन इकामती ही, और इनको मना नहीं किया था, इनको रोका नहीं था इस हद के कायम करने से, बुअदुहुम अनिल इमामी, इमाम से दूरी ने, यानी अगर तो इमाम से दूर रहते थे फिर तो उजर है, लेकिन अगर इमाम से दूर नहीं रहते, मालूम हुआ इमाम से बुअद ने इनको नहीं रोका, तो फिर इस सूरत में इनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। तो कहते हैं बेहद दिन मुतकादिबिन, उन्होंने गवाही दी ऐसी हद की जो पुरानी हो चुकी है, और लम यम नाहुम अन इकामती ही, बुअदुहुम अनिल इमामी, और इमाम से दूरी ने इनको यह हद कायम करने से नहीं रोका था, तो लम तुकबल शहादतुहुम, तो इनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी, इल्ला फी हद दिल कज़्फ खास सतन, मगर हद कज़्फ के अंदर खास तौर पर। हां, हद कज़्फ के अंदर अगर ताखीर भी हो जाए, ताखीर भी हो जाए, फिर भी गवाही सुनी जाएगी। वजह इसकी यह है कि हद कज़फ जो है वो खालिस अल्लाह का हक नहीं है, उसमें बंदे का भी हक है। याद रखो, हद कज़फ के अंदर गालिब अल्लाह का हक है, लेकिन इसमें बंदे का भी हक है, क्योंकि किसी पर जिना की तोहमत लगाई है, अगर अब वो हद का मुतालबा नहीं करता तो कल यह बात उसके लिए ताने का बाइस बन जाएगी, और लोग भी इसको ताना देंगे कि फुला ने भी तुम पर जिना का इल्जाम लगाया था, तो यह बात उसके लिए ताने का बाइस बन जाएगी। लिहाजा हद कज़फ जो है वह हकुल अब्द भी है, उसके अंदर अगर ताखीर भी हो जाए फिर भी गवाही कबूल की जाएगी। तो कहते हैं इल्ला फी हद कज़फ खास सतन, मगर हद कज़फ के अंदर खास तौर पर, वफिल जामे सगीर, और जामे सगीर के अंदर है। भाई वही बात जो मतन में आई वही अब जामे सगीर के हवाले से भी साहिब हिदाया जिक्र फरमाएंगे। मतन में भी क्या आया कि अगर गवाही पुरानी हो गई तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा, मगर हद कज़फ के अंदर उसको सुना जाएगा। जामे सगीर के अंदर भी यही बात जिक्र फरमाएंगे, लेकिन चूंकि जामे सगीर की इबारत में कुछ फवाइद जायद भी थे, लिहाजा इसलिए साहिब हिदाया इस कुदूरी के मतन के साथ साथ जामे सगीर की इबारत भी साथ जिक्र फरमा रहे हैं। भाई तो कहते हैं वफील जामे सगीर, और जामे सगीर के अंदर है, वह ईदा शहीदा अलैहि शुहूदू, और जब गवाह किसी शख्स के खिलाफ गवाही दे दें, बिसारी कतिन चोरी की, और बिशुर भी खमरिन या शराब पीने की, और बिजीनन या जीना की, बाद हीन इन कुछ वक्त के बाद, अगर गवाह गवाही दे दें चोरी की या शराब पीने की या जीना की, बाद हीन इन कुछ वक्त के बाद, लम युखज भी ही, तो इस गवाही को नहीं लिया जाएगा। वह जमीन सरिकता, और वो शख्स जो है चोरी के माल का जामिन होगा, वो शख्स चोरी के माल का जामिन होगा। तो देखो जामे सगीर के अंदर हुदूद को बाकायदा जिक्र फरमा दिया कि चोरी की है या शराब पी है या जिना किया है और कुछ वक्त गुजर जाए फिर इनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। तो हुदूद कुछ जिक्र कर दी हैं, जामे सगीर के अंदर बाकायदा कुछ हुदूद के नाम जिक्र किए, और नीज जामे सगीर में आ रहा है बाद हीनिन, कुछ वक्त के बाद आकर उन्होंने गवाही दी है। तो हीन का लफ्ज जिक्र किया है जामे सगीर के अंदर, और आपने पढ़ा था किताबुल ऐमान के अंदर, अगर एक शख्स कसम खा लेता है कि ला उकल्लिमु फुलानन हीनन या जमानन या अल हीना या अज़माना, यानी चाहे नकिरा लाए चाहे मारिफा लाए, तो हीन का या जमाने का लफ्ज जब मुतलक इस्तेमाल किया जाए और उसमें कोई नियत ना हो तो उससे छह माह की मुद्दत मुराद होती है। भाई तो यहां पर भी बादहीन के जरिए छह माह की मुद्दत की तरफ इशारा किया, और इसी की वजह से बाज मशाइख कहने लगे कि छह माह की मुद्दत के बाद गवाही आए तो फिर कबूल नहीं की जाएगी, ये शुरब खमर के बारे में या जीना या सरीका के बारे में। जबकि मैंने बताया कि सही कौल यह है कि अगर एक माह गुजर जाए तो बात पुरानी हो गई, अब गवाही कबूल नहीं की जाएगी। तो बाद हीन के जरिए जमाने की तरफ भी इशारा हो गया, और आगे जामे सगीर की इबारत में आया वह जमीन सरिकता, और वह चोरी का जामिन होगा, यानी एक माह के बाद अगर चोरी पर शहादत आई तो इस सूरत में हद तो नहीं साबित होगी, अलबत्ता चोरी का माल साबित हो जाएगा, वो माल चोर को अब अदा करना पड़ेगा। भाई आगे देखिए, वल असलु अन्नल हुदूद अल खालिसत हक्कन लिल्लाह तआला तब्तुलु बित्तकादुमी। वल असलु, और ज़ाबता यह है कि अन्नल हुदूद अल खालिसत हक्कन लिल्लाह तआला, कि वो हुदूद जो खालिस हो बैतिबार अल्लाह का हक होने के, तब्तुलु बित्तकादुमी, वो बातिल हो जाती हैं पुराना होने से, ज्यादा जमाना गुजरने से वो हुदूद बातिल हो जाती हैं। खिलाफन लिशाफई रहमहुल्लाह, बखिलाफ इमाम शाफई रहमहुल्लाह के। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जमाना ज्यादा ही क्यों ना गुजर जाए, फिर भी गवाही कबूल की जाएगी और हद जारी की जाएगी। तो कहते हैं खिलाफन लिशाफई रहमहुल्लाह, बखिलाफ इमाम शाफी रहमहुल्लाह के। वह हुआ या तबीरुहा बिहुकूकिल इबादी व बिल इकरारिल्लज़ी हुआ इहदल हुज्जतैन। इमाम शाफी रहमहुल्लाह इस गवाही को कियास करते हैं हुकूकुल इबाद के मामले पर। जैसे हुकूकुल इबाद का मामला है, वहां पर अगर गवाही में ताखीर भी हो जाए, फिर भी उस गवाही को सुना जाता है। एक आदमी ने मेरा माल देना है, तो चाहे मैं 10 साल के बाद भी काजी के पास गवाहों को लेकर जाऊं, तो फिर भी गवाही को सुना जाएगा। तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं जैसे हुकूकुल इबाद के मसले में ताखीर हो जाए, फिर भी गवाही को सुना जाता है, तो हुदूद के मसले में भी ताखीर हो जाए, फिर भी गवाही को सुना जाएगा। और नीस वो इस गवाही को कियास करते हैं इकरार पर। किस पर? इकरार। देखो ये हुदूद साबित होती हैं दो ही चीजों से, या गवाही हो या इकरार हो। और इकरार के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि इकरार के अंदर अगर ताखीर भी हो जाए, फिर भी इकरार मोतबर है, उसकी वजह से हद साबित हो जाएगी। एक शख्स ने 10 साल पहले जिना किया था और आज वो काजी के पास आकर अपने जिना का इकरार करता है 4 अलग अलग मजलिसों में, तो उसका ये इकरार मोतबर है। तो लिहाजा हुदूद के साबित करने के लिए दो हुज्जतें हैं, एक हुज्जत गवाही है और एक इकरार है। जब इकरार के अंदर ताखीर से कोई असर नहीं पड़ता और इकरार को मान लिया जाता है, तो गवाही के अंदर भी ताखीर से कोई असर नहीं पड़ेगा, लिहाजा गवाही को कबूल किया जाएगा। यह दलील चल रही है इमाम शाफई रहमतुल्लाह की। तो वो इस गवाही को कियास करते हैं हुकूकुल इबाद पर और इकरार पर। भाई तो कहते हैं खिलाफ अली शाफी रहमहुल्ला, बखिलाफ इमाम शाफी रहमहुल्ला के। वह हुआ या तबीरुहा बिहुकूकिल इबादी, वो इस गवाही को कियास करते हैं हुकूकुल इबाद पर, यानी हुकूकुल इबाद की गवाही पर कियास करते हैं। वह बिल इकरार इल्लज़ी हुआ इहदल हुज्जतैनी, और वो इसको कियास करते हैं उस इकरार पर जो दो हुज्जतों में से एक हुज्जत है। वलाना, अब हमारी दलील आ गई। हमारी दलील यह है, याद रखो अदाए शहादत सवाब का काम है। एक शख्स जब शहादत अदा करता है तो उसको अजर मिलता है, क्योंकि उसकी वजह से हकदार को उसका हक मिल जाएगा। अलबत्ता हुदूद के मसले में गवाह को इख्तियार है, वो चाहे तो गवाही अदा कर दे, वो जब गवाही अदा करेगा तो उसको सवाब मिलेगा, और वो चाहे तो मुसलमान के ऐब पर पर्दा डाल दे। अगर वो पर्दा डालता है तो इस पर उसको पर्दापोशी का अजर मिलेगा। भाई हमारी दलील चल रही है, मालूम हुआ कि गवाह को दो सवाबों में से एक सवाब का इख्तियार है, वो चाहे तो शहादत अदा करके सवाब कमा ले, और वो चाहे तो मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालकर पर्दापोशी का सवाब कमा ले। अब यहां पर हम कहते हैं कि ये जो इस गवाह ने ताखीर की, या तो इसने पर्दा डालने के लिए ताखीर की थी, ये पर्दापोशी करना चाहता था, या इसने वैसे ही ताखीर की है। अगर इसने वैसे ही ताखीर की है तो फिर ये फासिक हो चुका है, गुनाहगार हो चुका है, इसलिए क्योंकि अदाए शहादत तो जरूरी थी, अदाए शहादत तो वाजिब थी, तो इसने वाजिब की अदायगी में ताखीर कर दी, लिहाजा यह फासिक हो चुका है। जब यह फासिक हो चुका है तो इसकी गवाही काबिले कबूल नहीं है। भाई और अगर इसने इसलिए ताखीर की कि यह पर्दा डालना चाहता था और अब इस वजह से ताखीर से आया है, तो इस सूरत में भी गवाही कबूल नहीं की जाएगी, इसलिए क्योंकि जब इसने शुरू में पर्दा डालने का इरादा किया था, अब बाद में आकर गवाही दे रहा है, मालूम हो कोई दुश्मनी वगैरह की वजह से अब यह गवाही देने आया है। भाई किसी दुश्मनी ने और किसी कीने ने और बुगज ने इसको उभारा है गवाही देने पर, क्योंकि इसने तो पर्दापोशी का इरादा किया था, तो लिहाजा दिलों में बदगुमानी आती है। जब दिलों में बदगुमानी आती है तो अब इसकी गवाही को हुदूद के मसले में कबूल नहीं किया जाएगा। फिर सुनो, हमारी दलील यह है कि यहां पर गवाही देने वाले को इख्तियार है दो सवाबों में से जो सवाब भी वो कमाना चाहे, या तो वो अदाए शहादत कर देगा, गवाही दे देगा, इस पर भी उसको अजर सवाब मिलेगा, और वो चाहे तो मुसलमान के ऐब पर पर्दा डाल दे, इस पर भी उसको अजर मिलेगा। तो अगर उसने ताखीर वैसे ही की है, पर्दा डालने के लिए नहीं की, तो फिर इस सूरत में तो अदाए शहादत वाजिब था, तो वाजिब की अदायगी की वजह से वह फासिक हो चुका है, और हुदूद जो है फासिक की गवाही से साबित नहीं हो सकती भाई। और अगर इसने पर्दा पोशी का इरादा किया था तो उसके बाद फिर दोबारा इसका गवाही देने के लिए आना, मालूम हुआ कि ये किसी कीने ने, बोगज ने और किसी दुश्मनी ने इसको ये गवाही देने पर उभारा है, तो दिलों में बदगुमानी आती है, लिहाजा इस बदगुमानी की वजह से अब इसकी ये गवाही कबूल नहीं की जाएगी। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वलाना, और हमारी दलील यह है कि अन्ना शाहिदा मुखय्यरुम बैनल हिस्बतैनी, हिस्बतुन कहते हैं अल्लाह से सवाब की उम्मीद करना भाई। तो वलाना हमारी दलील यह है कि अन्ना शाहिदा मुखय्यरुम बैनल हिस्बतैनी, कि गवाह जो है उसको इख्तियार होता है दो सवाबों में से, यानी दो अजरों में उसको इख्तियार होता है। मिन आगे बयान है, दो अजर कौन से? कहते मिन अदा इशहादती व सत्री, यानी अदाए शहादत व सत्री और पर्दा पोशी। फताखीर इनकान इख्तियार सत्री, तो अगर ताखीर जो है इसके पर्दा पोशी को इख्तियार करने की वजह से थी, फल इकदाम अलल अदाई, तो इसका गवाही की अदायगी पर पेशकदमी करना, बाद अजालिका उस इख्तियार के बाद, उस इख्तियार सतर के बाद, पर्दापोशी को इख्तियार करने के बाद इसका अदाए शहादत पर पेशकदमी करना, लि जगीनतिन हयजत हु वली अदावतिन हरकत हु, जगीनतुन भाई ज़ाद के साथ है, जगीना कहते हैं कीने को भाई, जगीना कीना, दिल में जो किसी की नफरत और बुगज और कीना हो उसको जगीना कहते हैं। और हयजयु हयजु तहयीज का माना है उभारना, मालूम हुआ किसी कीने ने इसको उभारा है, और अदावत कहते हैं दुश्मनी को, औले अदावत इन हरकत हु, या किसी दुश्मनी ने इसको हरकत दी है, यानी इसको इस बात पर आमादा किया है कि जाकर गवाही दो, वरना तो इसका इरादा क्या था? पर्दा डालने का था। तो दिलों में बदगुमानी आती है, लिहाजा इसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते फताखीर इनकान इख्तियार सत्री, अगर यह ताखीर इसके पर्दापोशी को इख्तियार करने की वजह से थी, फल इकदाम अलल अदा इबादा जालिका, तो उसके बाद गवाही की अदायगी पर पेशकदमी करना, लिजगीनतिन हयजत हु, यह किसी ऐसे कीने की वजह से है जिसने इसको उभारा है, वली अदावतिन हरकत हु, और यह किसी ऐसी दुश्मनी की वजह से है जिसने इसको हरकत दी है। फयुत्तहमु फीहा, लिहाजा इस गवाही के अंदर यह शख्स मुत्तहम होगा, यानी इसके बारे में दिलों में बदगुमानी आती है कि किसी कीने की वजह से अब गवाही देने आया है भाई। तो कहते हैं फयुत्तहमु फीहा, तो यह गवाह जो है इस गवाही के अंदर मुत्तहम होगा, यानी उस पर तोहमत होगी। वह इन कानत ताखीर उलाल सत्री, और ये जो ताखीर थी अगर ये सतर के लिए नहीं थी, पर्दापोशी के लिए नहीं थी, वैसे इसने ताखीर की थी, तो कहते हैं वह इन कानत ताखीर उलाल सत्री, और अगर ये ताखीर पर्दापोशी के लिए नहीं थी, यसीर फासिकन आसिमन, तो ये शख्स जो है फासिक हो गया। फासिक कहते हैं नाफरमान भाई, अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करने वाला। तो कहते हैं अगर ये ताखीर जो है पर्दापोशी की वजह से नहीं थी, यसीरु फासिकन आसिमन, तो ये शख्स फासिक हो गया, आसिमन गुनाहगार हो गया, क्योंकि अदाए शहादत वाजिबात में से था भाई, इसने वाजिब की अदायगी नहीं की, तो ये फासिक और गुनाहगार हो गया। फतयक्कन ना बिल मानेई, तो हमने यकीन कर लिया माने के होने का, हमने यकीन कर लिया मान्या का, अगर इसने ताखीर की है सतर के लिए फिर भी अब आया है, तो दिलों में बदगुमानी आती है कि ये किसी कीने की वजह से गवाही दे रहा है, और अगर इसने वैसे ताखीर की थी तो भी इस सूरत में ये फासिक और गुनाहगार हो चुका है। तो दोनों सूरतों में मान्या आ गया, जब ये ताखीर करे, जब ये ताखीर करे, तो दोनों सूरतों में माने आ गया, चाहे इसका सतर का इरादा था या सतर का इरादा नहीं था, तो दोनों सूरतों में फतयक्कन नाबिल मानेई, तो हमने माने का यकीन कर लिया, यानी माने आ गया इसकी गवाही कबूल करने से। तो फतयक्कन्ना बिलमानिई, हमने मानिया का यकीन कर लिया। बिखिलाफिल इकरारी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह जो है उन्होंने इसको कियास किया था इकरार पर, कि इकरार में ताखीर का एतबार नहीं, तो गवाही के अंदर भी ताखीर का एतबार नहीं किया जाएगा, उसे कबूल किया जाएगा। तो अब उसका जवाब दे रहे हैं कि गवाही में ताखीर हो जाए वहां तो दिलों में बदगुमानी आती है कि ये किसी कीने और दुश्मनी की वजह से गवाही देने आया है, लेकिन इकरार तो अपनी जात के बारे में होता है तो वहां दिलों में बदगुमानी नहीं आती भाई कि ये अपने आप से दुश्मनी कर रहा है भाई। तो कहते हैं बेखिलाफ इल इकरारी, बखिलाफ इकरार के, लिअन्न अल इंसान ला युआदी नफ्सहु, इसलिए क्योंकि इंसान अपनी जात से दुश्मनी नहीं करता तो वहां कोई बदगुमानी नहीं है, तो इकरार में ताखीर हो जाए फिर भी उसे कबूल किया जाएगा। आगे देखिए, फहद्दु ज़िना व शुर्बिल खम्र व सरिकति खालिसु हक़िल्लाह तआला। फहद्दु ज़िना, तो ज़िना की जो हद है, व शुर्बिल खम्री, और शुर्बे खमर की जो हद है, व सरिकति, और चोरी की जो हद है, खालिसु हक़िल्लाह तआला, ये खालिस अल्लाह का हक है। हत्ता यसिहु रुजू अनहा बादल इकरारी, यहां तक इकरार के बाद इनसे रुजू भी सही है। अगर कोई शख्स ज़िना का इकरार कर ले या चोरी का इकरार कर ले या शराब पीने का इकरार कर ले और काजी जो है फैसला कर दे हद के जारी करने का, तो ये फिर भी रुजू कर सकता है। मालूम हुआ ये खालिस अल्लाह का हक है इसीलिए रुजू कर सकता है। अगर ये बंदे का हक होता तो फिर तो इसके रुजू का कोई एतबार न होता। और यहां पर याद रखो, ये जो आया हत्ता या सिहु, यहां पर हत्ता नसब नहीं देगा, या सिहु पर हम रफा पढ़ेंगे। वजह यह कि मैंने आपको बतलाया था कि हत्ता के नसब देने के लिए दो शर्तें हैं। एक तो यह कि हत्ता का मा बाद जो है वो मुस्तकबिल होना चाहिए हत्ता के माकबल की तरफ निस्बत करते हुए, और दूसरी शर्त यह थी कि वो जो हत्ता है वो सबबियत या गाया का फायदा दे रहा हो, यानी माकबल जो है वो सबब हो मा बाद के लिए, या जो हत्ता का मा बाद है वो गाया हो हत्ता के माकबल के लिए। और यहां ये शर्तें पूरी नहीं भाई, इसलिए यहां हत्ता के बाद अन मुकद्दर नहीं होगा। तो कहते हैं हत्ता यसिहु रुजू अनहा बाद अल इकरारी, यहां तक इकरार करने वाले का रुजू भी सही है इकरार के बाद। फयकूनु तकादुमु फीहि मानिअन, तो लिहाजा इसके अंदर पुराना होना मानिअ होगा। चोरी की हद और जिना की हद और शुर्बे खमर की हद, ये खालिस अल्लाह का हक है और यहां तक इनसे रुजू करना भी सही है, तो लिहाजा इनके अंदर गवाही का पुराना होना यह मानिअ बन जाएगा हद से। तो कहते हैं फयकूनु तकादुमु फीहि मानिअन, तो इसके अंदर पुराना होना जो है वो मानिअ होगा। वहद्दुल कज़्फ फीहि हक़ुल अब्दी, और हद कज़्फ जो है इसके अंदर बंदे का हक है। भाई गुज़श्ता सबक के बिल्कुल आखिर में आया था कि हद कज़्फ के अंदर शरीयत का भी हक है और शरीयत का हक उसको गालिब करार दिया गया है। मालूम हो हद कज़्फ में बंदे का भी हक और शरीयत का भी हक, अगरचे ज्यादा हक शरीयत का है लेकिन बंदे का भी हक है भाई। जब ये बंदे का हक है तो इसके अंदर अगर गवाही के अंदर ताखीर हो जाए फिर भी गवाही को कबूल किया जाएगा। तो कहते हैं वह हद्दुल कज़्फ फीहि हक़ुल अब्दी, और हद कज़्फ जो है इसके अंदर बंदे का हक है। लिमा फीहि मिन दफ़इल आर अन्हु, इस वजह से कि इसके अंदर अपने आप से आर को दूर करना है। एक शख्स ने दूसरे पर जिना की तोहमत लगाई तो ये काजी के पास जाकर मुतालबा कर सकता है कि काजी साहब इस शख्स ने मुझ पर जिना का इल्जाम लगाया है, इस पर हद कज़्फ जारी की जाए। इसलिए क्योंकि अगर वो ऐसा मुतालबा नहीं करेगा तो फिर इस सूरत के अंदर ये बात तो उसके लिए ताने का बाइस बन जाएगी और लोग भी कल इसको फिर ताना देंगे कि फुला ने तुम्हें इस तरह कहा था भाई। तो कहते हैं लिमा फीही मिन दफ़इल आर अन्हु, इस वजह से कि इसके अंदर बंदे से आर को दूर करना है। वलिहादा ला यसिहु रुजूहु बादल इकरारी, और इसीलिए इकरार के बाद इसे रुजू भी सही नहीं। हकुल्लाह के अंदर तो इकरार के बाद भी रुजू किया जा सकता है लेकिन हकुल अब्द के अंदर इकरार के बाद रुजू नहीं किया जा सकता क्योंकि फरीके मुखालिफ मौजूद है। यह इनकार करेगा लेकिन वो इसका रद्द करेगा तो रद्द करने वाला मौजूद है, लिहाजा यहां इसका रुजू मोतबर नहीं है भाई। तो कहते हैं वलिहादा ला यसिहु रुजूहु बाद अल इकरारी, और इसीलिए इकरार के बाद इसका रुजू सही नहीं है। व तकादुमु गैरु मानिअ फी हुकूकिल इबादी, और पुराना होना यह मानिअ नहीं है हुकूकुल इबाद से। जमाना ज्यादा गुजर जाए तो यह हुकूकुल इबाद से मानिअ नहीं। एक आदमी ने मेरे पैसे देने हैं तो मैं 10 साल के बाद भी काजी के पास जाकर मुकदमा कर सकता हूं। तो कहते हैं वह तकादुमु गैरु मानिअ फी हुकूकिल इबादी, और पुराना होना यानी जमाने का ज्यादा गुजरना यह हुकूकुल इबाद से मानिअ नहीं है। लिअन्ना दावा फी ही शर्तुन, इसलिए क्योंकि इसके अंदर दावा शर्त है। हुकूकुल इबाद के अंदर दावा शर्त होता है, साहिब हक दावा करे, साहिब हक दावा करे यह जरूरी है। जैद ने मेरा माल देना है तो जब तक मैं दावा नहीं करूंगा वहां गवाही पेश नहीं हो सकती। भाई तो कहते हैं लिअन्न दावा फी ही शर्तुन, इसलिए क्योंकि हुकूकुल इबाद के अंदर दावा शर्त है। फयुहमलु ताखीरहुम अला इदामि दावा, लिहाजा गवाहों की ताखीर जो है उसको महमूल किया जाएगा दावे के न होने पर। भाई इधर देखिए, इन्होंने आपको बतलाया कि वो हुदूद जो खालिस अल्लाह का हक है उनके अंदर अगर ताखीर हो जाए तो गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा, लेकिन हद कजफ के अंदर खास तौर पर अगर ताखीर भी हो जाए फिर भी गवाही को कबूल किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बंदे का भी हक है, और बंदे का जब हक है तो उस बंदे के हक में तो दावा जरूरी होता है। तो यहां भी याद रखो, जिस पर जिना का इल्जाम लगा है उसका दावा जरूरी है, उसके दावे के बगैर हद कजफ साबित नहीं हो सकती। भाई तो यहां पर अगर गवाही के अंदर ताखीर हुई है, मसलन एक आदमी 3-4 माह के बाद काजी के पास आया कि काजी साहब 4 माह कबल इसने मुझ पर जिना का इल्जाम लगाया था और मेरे पास गवाह भी मौजूद हैं, तो अब अगरचे ताखीर हो चुकी है लेकिन फिर भी गवाही को सुना जाएगा, और यहां पर जो गवाही में ताखीर हुई उसको महमूल किया जाएगा दावे की ताखीर पर, कि चूंकि दावा देर से किया गया इसलिए गवाह भी देर से आए, अगर दावा जल्दी किया जाता तो गवाह भी जल्दी आ जाते। तो हुकूकुल्लाह के अंदर तो दावा जरूरी नहीं है, वहां तो गवाही में अगर ताखीर हुई है तो हम दावे की ताखीर पर उसको महमूल ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो दावा ही नहीं होता, जबकि हुकूकुल इबाद के अंदर तो दावा होता है। तो यहां पर तवज्जो है, तो हद कजह में दावा जरूरी है, तो यहां पर अगर गवाही के अंदर ताखीर भी हुई है हम उसको महमूल करेंगे दावे की ताखीर पर, कि चूंकि दावा देर से हुआ इसलिए गवाही भी देर से आई। भाई कहते हैं लिअन्न दावा फी ही शर्तुन, इसलिए क्योंकि हकुल अब्द के अंदर दावा शर्त है। फयुहमलु ताखीरहुम अला इदामि दावा, लिहाजा गवाहों की ताखीर जो है उसको दावे के न होने पर महमूल किया जाएगा। फला यूजिबु तफसीकहुम, लिहाजा ये उनके फासिक करार देने को साबित नहीं करता। फला यूजिबु ऐ फला युस्बितु, और तफसीकहुम, याद रखो फस्सक युफस्सिकु तफसीक, भाई ये बाबे तफईल है, तो तफसीक का माना है किसी को फासिक करार देना, जैसे कफ्फरा युकफिरु तकफीर का माना है किसी को काफिर करार देना। तो कहते हैं फला यूजिबु तफसीकहुम, अब देखो हद कजफ के मामले में भी गवाह ताखीर से आए हैं, और आपने हमें बताया था कि अदाए शहादत वाजिब है, और जो वाजिब की अदायगी में ताखीर करेगा वो फासिक हो जाता है, तो लिहाजा यहां पर भी गवाहों को फासिक करार देना चाहिए, लेकिन कहते हैं यहां जो ताखीर हुई है उसको महमूल किया जाएगा दावे की ताखीर पर, कि दावा चूंकि देर से हुआ है लिहाजा इनकी ताखीर पर इनको अब फासिक करार नहीं दिया जा सकता। यह माना है फयुहमलु ताखीरहुम अला इदामि दावा, तो इनकी ताखीर को महमूल किया जाएगा दावे के न होने पर। फला यूजिबु तफसीकहुम, लिहाजा यह ताखीर जो है इनके फासिक करार देने को साबित नहीं करती। बात समझ में आ गई। आगे देखिए बिखिलाफ हद सरीकती, बखिलाफ हद सरीका के, यहां से साहिब हिदायत के एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज यह होता है कि ए साहिब हिदायत, आपने हमें बताया कि हुदूद के अंदर अगर गवाही के अंदर ताखीर हो जाए तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वहां दावा जरूरी हो तो फिर गवाही कबूल करेंगे, उस गवाही की ताखीर को किस पर महमूल कर लेंगे, दावे की ताखीर पर, कि चूंकि जैसे हद कजफ है, हद कजफ में देर से भी गवाही आए फिर भी कबूल कर लेंगे, और किस पर महमूल करेंगे, इस गवाही की ताखीर को किस पर महमूल करेंगे, दावे की ताखीर पर। तो इसी तरह तो दावा चोरी के अंदर भी जरूरी है, चोरी के अंदर भी दावा जरूरी है, बगैर दावे के हद सरीका जारी नहीं की जा सकती। भाई तो मालूम हुआ आपकी बात दुरुस्त नहीं। आपने तो हमें क्या कहा था, आपने हमें बताया था कि हुकूकुल इबाद के अंदर गवाही अगर पुरानी भी हो जाए फिर भी कबूल की जाएगी और गवाही की ताखीर को महमूल किया जाएगा दावे की ताखीर पर। हालांकि हद सरीका के अंदर भी दावा जरूरी है, लेकिन फिर भी वहां पर अगर ताखीर हो जाए, एक माह गुजर जाए, उसके बाद काजी के पास गवाह पेश हो, तो फिर हद सरीका साबित नहीं होगी। हालांकि यहां पर भी तो दावा है, यहां पर भी तो इस ताखीर को दावे की ताखीर पर महमूल करना चाहिए, लेकिन यहां आप कहते हैं कि नहीं, यहां महीना गुजर गया तो बात पुरानी हो गई, अब हद सरीका जारी नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई। क्या इतराज हुआ कि आपने हमें बताया है कि जहां दावा जरूरी हो वहां अगर गवाही में ताखीर हो जाए फिर भी गवाही कबूल कर ली जाएगी। अब बेआईन ही यही मसला चोरी के अंदर भी है, हद सरीका के अंदर भी दावा जरूरी है, तो लिहाजा अगर गवाही देर से भी आए तो उसको कबूल करना चाहिए और गवाही की ताखीर को दावे की ताखीर पर महमूल किया जाए। लेकिन आपने हमें बताया कि हद सरीका की गवाही में अगर ताखीर हो जाए तो गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा। एतराज समझ में आया तो उसका जवाब देंगे साहिब हिदाया कि भाई देखिए, हद सरीका जो है हमने आपको बतलाया कि खालिस अल्लाह का हक है, खालिस अल्लाह का हक है, और यहां पर जो दावे को लाजिम करार दिया गया वो हद सरीका के लिए दावा लाजिम नहीं है बल्कि माल के लिए, क्योंकि एक शख्स का माल चोरी हुआ है तो माल की वजह से हमने दावा लाजिम करार दिया है, हद सरीका की वजह से दावा लाजिम ही नहीं है। मालूम हो ये जो दावा है ये हद सरीका के लिए नहीं है, जब ये हद सरीका के लिए नहीं है तो लिहाजा यहां ताखीर होगी तो गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा। तो हासिल जवाब ये कि हद सरीका के अंदर दावा शर्त तो है, लेकिन यह दावा हद के लिए नहीं शर्त बल्कि माल के लिए शर्त है। जब हद के लिए दावा नहीं शर्त तो लिहाजा जब गवाही पुरानी हो जाएगी तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो फिर तर्जमा देख लीजिए तो कहते हैं बिखिलाफ हद सरीकत, बिखिलाफ चोरी की हद के, लिअन्न दावा लैसत बिशर्तिन लिल हद, इसलिए क्योंकि दावा जो है वो हद के लिए शर्त नहीं है, दावा हद के लिए शर्त नहीं है। लिअन्नहु खालिसु हक़िल्लाहि तआला अला मा मर्रा, इसलिए क्योंकि ये चोरी के हक खालिस अल्लाह ताला का हक है, अला मा मर्रा, उस वजह से जो बात गुजर गई, हमने पीछे आपको बतलाया था कि हद सरीका, हद जिना और हद शुर्बे खमर ये तीनों खालिस अल्लाह का हक है। भाई तो कहते हैं ये खालिस अल्लाह का हक है तो इसके अंदर दावा शर्त नहीं है। वह इन नमा शुरी तत्लिल माली, और ये जो दावे की शर्त लगाई गई है वो माल की वजह से है, और माल तो हकुल अब्द है, माल हकुल अब्द है। तो मालूम हुआ चोरी के मामले में दावा शर्त है, लेकिन ये दावा उस हद के लिए नहीं है बल्कि दावा माल के लिए है, तो लिहाजा यहां अगर ताखीर होगी तो फिर गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, वली अन अल हुक्म युदारु अला कौन अल हद हक्कन लिल्लाह तआला फला युतबरु वजूद अत तुहमति फी कुल्ली फर्दिन। तवज्जो से समझिए, यह भी गहरी बात है। भाई कहते हैं देखिए, वो हुदूद जो खालिस अल्लाह का हक हैं उनके अंदर जब गवाही के अंदर ताखीर हो जाए उसको कबूल नहीं किया जाता, इसलिए क्योंकि दिलों में बदगुमानी आती है कि यह शायद किसी दुश्मनी और कीने की वजह से अब गवाही देने आया है। जब वो हुदूद जो खालिस अल्लाह का हक है उनके अंदर जब गवाही ताखीर से आ जाए तो उसे कबूल नहीं करते। क्यों नहीं कबूल करते? दिलों में बदगुमानी आती है कि इतनी देर से यह आ रहा है, मालूम हुआ इसका पहले इरादा था पर्दा डालने का, लेकिन फिर कीने और दुश्मनी ने इसको आमादा किया और यह गवाही देने आ गया। भाई तो दिलों में बदगुमानी आती है, लेकिन दिल का कीना और दिल की दुश्मनी ये तो एक पोशीदा चीज है, अमरे बातनी है, हमें तो पता नहीं चल सकता जी। हमें तो पता नहीं चल सकता, तो लिहाजा यहां पर हुक्म का मदार इस कीने और बुग़्ज़ पर है ही नहीं, बल्कि हुक्म का मदार इस बात पर कर दिया गया कि अगर हद खालिस अल्लाह का हक है तो फिर ताखीर की सूरत में गवाही कबूल नहीं की जाएगी। तवज्जो है जी। फिर समझो, फिर समझो। ये चोरी और शुरबे खमर वगैरह, इनके अंदर अगर गवाही में ताखीर हो जाए, एक माह गुजर जाए तो बात पुरानी हो गई, अब गवाही नहीं सुनी जाएगी। क्यों नहीं सुनी जाएगी? क्योंकि दिलों में बदगुमानी आती है, मालूम हुआ इसने पहले पर्दा डालने का इरादा किया था, अब बाद में किसी दुश्मनी ने और कीने ने इसको उभारा है यह गवाही देने पर, तो दिलों में बदगुमानी आती है। लेकिन दिल की बदगुमानी यह तो एक अमरे बातिनी है, किसके दिल में दुश्मनी या कीना है और किसके दिल में दुश्मनी और कीना नहीं, यह तो हमें पता नहीं चल सकता। लिहाजा इस हुक्म का मदार, यानी गवाही कबूल नहीं करनी देर से आ जाए तो, देर से आ जाए तो गवाही कबूल नहीं करनी, इस हुक्म का मदार उस कीने और बुगस पर रखा ही नहीं गया, क्योंकि वो कीना और बुगस तो अमरे बातनी है, उसका हमें पता ही नहीं चल सकता। बल्कि अब इस हुक्म का मदार इस बात पर कर दिया गया कि वो हद अगर खालिस अल्लाह का हक है तो फिर ताखीर की सूरत में गवाही कबूल नहीं की जाएगी। असल इल्लत तो क्या थी? कीना और बुगस, लेकिन उसका हमें पता नहीं चल सकता। तो फिर हुक्म का मदार किस पर कर दिया कि हद अगर खालिस अल्लाह का हक है तो बस फिर उसके अंदर ताखीर की सूरत में गवाही कबूल नहीं की जाएगी। यह बिल्कुल इसी तरह है जैसे देखो सफर के अंदर शरीयत ने अहकाम में नरमी कर दी, अगर सफर के अंदर कोई रोजा नहीं रख सकता तो बाद में उसको रख ले, और इसी तरह सफर के अंदर चार रकत वाली नमाज के बजाय दो रकत अदा करता है। वजह इसकी यह है कि सफर के अंदर मशक्कत होती है इंसान को, इंसान तकलीफ में है, मुश्किल में है, लिहाजा शरीयत ने अहकाम में नरमी कर दी। तो मालूम हुआ ये जो शरीयत ने नरमी की है इसका दारोमदार मशक्कत पर है, यानी इसकी इल्लत मशक्कत है। लेकिन मशक्कत तो एक अमरे बातनी है, इसका तो हमें पता नहीं चल सकता किस आदमी को कितनी मशक्कत हुई है, किस आदमी को कितनी मशक्कत नहीं हुई। बाज लोगों को अल्लाह ने ऐसा मजबूत जिस्म दिया होता है कि 8-10 दिन भी वो सफर करते रहें तो उन्हें महसूस ही नहीं होता, उन्हें जरा भर भी मशक्कत नहीं होती। तो लिहाजा सफर के अंदर अहकाम शरीयत के अंदर नरमी आ गई, इसका दारोमदार किस पर है? मशक्कत पर। लेकिन मशक्कत तो अमरे बातनी है और उसका तो हमें पता नहीं चल सकता, लिहाजा इस हुक्म का मदार सफर पर कर दिया गया कि बस जो शख्स भी 3 दिन की मसाफत का इरादा करेगा तो उसके लिए ये अहकाम साबित हो जाएंगे। अब यहां मशक्कत को देखा ही नहीं जाएगा, चाहे एक फर्द ऐसा उसको 3 दिन के सफर में जर्रा भर भी मशक्कत नहीं हुई, फिर भी उसके लिए 4 रकत नमाज के बजाय 2 रकत पढ़ना होगी और उसके लिए रोजों में भी रुख्सत है, वो चाहे तो बाद में भी रख सकता है। तवज्जो है। तो सफर के अंदर अहकाम की नरमी का दारोमदार किस पर था? मशक्कत पर। लेकिन मशक्कत एक अमरे बातिनी है, उसका हमें पता नहीं चल सकता, लिहाजा हुक्म का मदार मशक्कत पर रखा ही नहीं गया बल्कि हुक्म का मदार सफर पर रख दिया गया। जो 3 दिन की मसाफत की इरादा करेगा तो मालूम हुआ मशक्कत मौजूद है, जब मशक्कत मौजूद है तो अहकाम में नरमी आ जाएगी। यहां पर भी इसी तरह है, यहां पर भी इसी तरह है कि देर से अगर गवाही आए तो गवाही को कबूल नहीं करना। इसकी बुनियाद थी दिल के कीने और दुश्मनी पर, लेकिन दिल का कीना और दुश्मनी वो तो एक अमरे बातनी है, उसका हमें पता नहीं चल सकता, लिहाजा देर से आए तो गवाही कबूल नहीं करनी। इस हुक्म का मदार खालिस हकुल्लाह पर कर दिया गया, अगर वो हद खालिस अल्लाह का हक है तो गवाही देर से आए तो कबूल नहीं करनी। जी। नहीं तवज्जो। गवाही देर से आए तो कबूल नहीं करते, वजह क्या थी? दिलों में बदगुमानी आती है कि यह कीना या दुश्मनी कर रहा है, लेकिन यह कीना या दुश्मनी का तो पता नहीं चल सकता, लिहाजा इस गवाही को कबूल नहीं करना इस हुक्म का मदार खालिस अल्लाह का हक होने पर कर दिया गया। जो हद भी खालिस अल्लाह का हक है वहां गवाही देर से आए तो उसे कबूल नहीं करेंगे, चाहे उसके अंदर कीने या बुगज का इहतमाल हो या ना हो। जैसे सफर के अंदर मशक्कत हो या ना हो, बस जो 3 दिन के मसाफत की नीयत करेगा वो मुसाफिर बन गया, उसके लिए यह अहकाम साबित हो गए। यहां पर भी जो हद खालिस अल्लाह का हक है तो देर से गवाही आए तो गवाही कबूल नहीं करेंगे, चाहे वहां पर कीने और बुगज का इहतमाल हो या इहतमाल ना हो। यहां अब चोरी के मसले में आपने हमें क्या कहा? चोरी के मसले में तो दावा शर्त है, तो लिहाजा जब दावा शर्त है तो दिलों में बदगुमानी नहीं आती कि ये जो गवाहों ने ताखीर की है दुश्मनी की वजह से ताखीर नहीं की, बल्कि दावे में ताखीर हो गई थी इसलिए इन्होंने ताखीर की है। जी। तो चोरी के मामले में अगरचे उजर मौजूद है गवाहों के लिए जो उनसे तोहमत को खत्म कर देता है कि दावा चूंकि देर से हुआ इसलिए गवाह भी देर से आए, इन्होंने जो देर की है देर के बाद ये आए हैं, ये किसी कीने और बुगज की वजह से नहीं आए, तो चोरी के मामले में दावा जरूरी है और इस दावे की वजह से गवाहों को उजर मिल गया, मालूम हुआ उनके दिलों में कीना नहीं। लेकिन यहां पर हुक्म का दारोमदार जो है वो अब खालिस अल्लाह का हक होने पर कर दिया गया, कीने पर इस हुक्म का मदार ही नहीं है, लिहाजा इसको अब देखा ही नहीं जाएगा कि कीना है या कीना नहीं। तो चोरी के मसले में दावा होना जरूरी है, दावे की वजह से कीने की तोहमत नहीं आती, कीने की बदगुमानी दिलों में नहीं आती, लेकिन इस कीने पर हुक्म का मदार रखा ही नहीं गया, हुक्म का मदार खालिस अल्लाह का हक होने पर रखा गया है और चोरी की हद भी खालिस अल्लाह का हक है, तो यहां पर भी ताखीर हो गई तो गवाही कबूल नहीं की जाएगी। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वली अन्नल हुक्म युदारु अला कौनिल हद हक्कन लिल्लाह ताला, और इसलिए क्योंकि इस हुक्म का मदार इस हद का अल्लाह का हक होने पर है, इस हुक्म का मदार इस हद का अल्लाह का हक होने पर है, कौन सा हुक्म कि ताखीर से गाए तो गवाही कबूल नहीं की जाएगी। तो कहते हैं वली अन्नल हुक्म युदारु अला कौनिल हद हक्कन लिल्लाह ताला, तो ताखीर की सूरत में गवाही कबूल न करने का जो हुक्म है इसका मदार उस हद के अल्लाह का हक होने पर है, फला युअतबर वुजूदु तोहमति फी कुल्ली फर्दिन, लिहाजा एतबार नहीं किया जाएगा तोहमत के पाए जाने का हर फर्द में, तोहमत हो या ना हो, बस जो भी खालिस अल्लाह का हक है उसमें जब ताखिर हो जाएगी तो गवाही कबूल नहीं की जाएगी। जैसे सफर के अंदर 3 दिन की मसाफत है, मशक्कत हो या ना हो इसको अब नहीं देखा जाएगा, बल्कि हर हाल में वो सफर वाले अहकाम साबित हो जाएंगे। तो ये माना है फला युअतबर वुजूदु तोहमति फी कुल्ली फर्दिन, लिहाजा तोहमत के पाए जाने का एतबार नहीं किया जाएगा हर फर्द के अंदर। तोहमत कौन सी थी कि ये कीने या दुश्मनी की वजह से गवाही देने आया है, उस तोहमत को नहीं देखा जाएगा, उस पर अब हुक्म का मदार ही नहीं है। आगे देखिए वली अन्न सरिकत तुकामु अलस्तिसरार अला गिरतिन अनिल मालिक, तीसरा जवाब दे रहे हैं, कहते हैं वली अन्न सरिकत तुकामु अलस्तिसरार अला गिरतिन अनिल मालिक, इस्तिसरार भाई इस्तसर यस्तसिर इस्तिसरारन, इसका माना है छुपना और पोशीदा होना, छुपना और पोशीदा होना। और गिर्रतुन, गिर्रतुन कहते हैं गफलत और बेखबरी को। तो कहते हैं वली अन्न सरिकता तुकामु, इसलिए क्योंकि चोरी जो है वो कायम की जाती है, यानी चोरी की जाती है अलस्ते सरारी, राजदारी से, राजदारी करते हुए आखिर में आ रहा है अनिल मालिक, मालिक से चोरी की जाती है, मालिक से छुप कर, मालिक से पोशीदा रखकर, अला गिर्रतिन गफलत पर, गफलत और बेखबरी में, तवज्जो है। तो कहते हैं वली अन्न सरिकता तुकामु अलस्ते सरारी, इसलिए क्योंकि चोरी जो है की जाती है अलस्ते सरारी, राजदारी से, राजदारी से, अला गिर्रतिन अनिल मालिकी। भई ये इबारत जोड़ लें फिर आपके लिए तर्जमा आसान होगा, वैसे तर्जमा मुश्किल है। देखो वली अन्न सरिकता तुकामु, इसलिए क्योंकि चोरी कायम की जाती है, माना यह है चोरी की जाती है, अलस्ते सरारी छुप कर, राजदारी से, भाई किससे छुप कर, किससे राजदारी से, आखिर में आ रहा है अनिल मालिकी, तो यह अनिल मालिक का ताल्लुक इस्तेसरार से है, मालिक से छुप कर चोरी की जाती है, मालिक से छुप कर, और दरमियान में आया अला गिर्रतिन बेखबरी में, बेखबरी पर और गफलत पर, बेखबरी और गफलत के अंदर मालिक से छुप कर चोरी की जाती है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वली अन्न सरिकता तो कामु, इसलिए क्योंकि चोरी जो है वो की जाती है अलस्ते सरारी अला गिर्रतिन अनिल मालिकी, मालिक से छुप कर गफलत में, बेखबरी में, फयजिबु अला शाहिदी इलामुहु, तो गवाह पर वाजिब है इलामुहु, उस मालिक को इत्तला देना। एक शख्स ने एक चोर को चोरी करते हुए देखा तो गवाह पर वाजिब है कि मालिक को जाकर बतलाए कि फलां शख्स आपकी चीज उठाकर ले गया है। तो कहते हैं फयजिबु अला शाहिदी इलामुहु, तो गवाह पर वाजिब था उस मालिक को इत्तला देना। व बिल कितमानी यसीरु फासिकन आसिमन, और छुपाने की वजह से यह फासिक और गुनाहगार हो गया। लिहाजा इसलिए भी देर से अब इसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। गवाह का क्या काम था कि मालिक को जाकर बताता कि आपकी चीज फुलां उठाकर ले गया है, और इसने मालिक को जाकर नहीं बताया, तो लिहाजा इसकी वजह से ये क्या बन गया, फासिक और गुनाहगार बन गया भाई। क्योंकि जब तक मालिक को जाकर यह बताएगा नहीं, मालिक को क्या पता चलेगा, मालिक को तो इतना पता है मेरी चीज चोरी हो गई है, लेकिन उसको तो नहीं पता कि इस पर कोई गवाह भी मौजूद है और इसको कौन लेकर गया है। तो इसका काम था मालिक को जाकर इत्तला देता कि उस बेचारे का माल चोरी हुआ है, और नीस ताकि मालिक को भी पता चल जाए कि चोरी पर बाकायदा गवाह मौजूद हैं, फिर ही वो दावा करेगा। उसने तो इसीलिए दावा नहीं किया क्योंकि उसके ख्याल में कोई गवाह ही नहीं था भाई। बात समझ में आ गई। तो यह माना है फयजिबु अल शाहिदी इलामहु, तो गवाह पर वाजिब था उस मालिक को इत्तला देना, वबिल कितमान यसीरु फासिकन आसिमन, और इस गवाही को छुपाने की वजह से वो फासिक और गुनाहगार हो गया। तो देखो साहिब हिदाया ने तीन जवाबात जिक्र किए। एतराज यह होता था कि वो हुदूद जिनमें दावा शर्त है वहां पर अगर ताखीर भी हो जाए फिर भी गवाही कबूल कर ली जाएगी, तो इस पर इश्काल होता था, चोरी की हद के अंदर भी दावा शर्त है लेकिन वहां आप कहते हैं ताखीर हो जाए तो गवाही कबूल नहीं की जाएगी। तो एक जवाब उसका यह दिया साहिब हिदाया ने कि चोरी की हद के लिए दावा जरूरी है ही नहीं, ये जो दावा जरूरी है यह माल की वजह से शर्त करार दिया गया है, और माल तो बंदे का हक है। और दूसरा जवाब यह दिया कि चोरी की हद जो है उसके अंदर ताखीर हो जाए तो फिर गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा, इसलिए क्योंकि गवाही को जो कबूल नहीं किया जाता उसका दारोमदार जो है कीने और बुगस पर है, लेकिन कीना और बुगस तो एक अमरे बातनी है, लिहाजा गवाही कबूल न करने के हुक्म का मदार जो है वो खालिस अल्लाह का हक होने पर कर दिया गया, लिहाजा अब जो भी खालिस अल्लाह का हक है वहां पर देर हो जाए तो गवाही कबूल नहीं की जाएगी, चाहे वहां देर की वजह से दिलों में बदगुमानी आती है या नहीं आती। जैसे सफर का दारोमदार मसाफत पर कर दिया गया, अगरचे असल इल्लत मशक्कत है लेकिन मशक्कत का चूंकि पता नहीं चल सकता था तो अब हुक्म का दारोमदार तीन दिन की मसाफत पर कर दिया गया, और अब मशक्कत को देखेंगे ही नहीं, अब जहां भी तीन दिन की मसाफत होगी सफर के अहकाम साबित हो जाएंगे, वहां पर इल्लत को नहीं देखा जाएगा कि मशक्कत है या नहीं है। और फिर तीसरा जवाब साहिब हिदाया ने यह दिया कि चोरी के मामले में देर से गवाही आए तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा क्योंकि गवाह फासिक हो चुके हैं, इनका काम था मालिक को जाकर बतलाते लेकिन इन्होंने मालिक को नहीं बताया तो ये फासिक हो गए, लिहाजा इनकी गवाही अब कबूल नहीं की जाएगी। बात समझ में आ गई। आगे देखिए कहते हैं सुम तकादुमु कमा यमनाउ कबूल शहादती फिल इब्तिदाई यमनाउ इकामत बाद अल क़ज़ा इंदना। भाई इन्होंने आपको बतला दिया हुदूद के मसले में अगर गवाही पुरानी हो गई तो फिर गवाही नहीं सुनी जाएगी। इसी तरह याद रखो अगर काजी ने हद का फैसला कर दिया, गवाही जल्दी आ गई और काजी ने हद का फैसला भी कर दिया लेकिन फिर हद कायम करने में ताखीर हो गई, तब भी हद साकित हो जाएगी। जैसे गवाही देर से आने पर हद साकित हो जाती थी, इसी तरह अगर काजी के फैसले के बाद हद नाफिस करने में ताखीर हो गई तब भी हद साकित हो जाएगी। मसलन एक चोर जो है, एक चोर पर चोरी साबित हो गई और काजी ने फैसला कर दिया इसका हाथ काट दिया जाए, लेकिन वो चोर जो है वो जेल से भाग गया और फिर दो तीन महीने बाद फिर दोबारा पकड़ा गया, तो याद रखो अब इसका हाथ नहीं काटा जा सकता क्योंकि हद के कायम करने में ताखीर हो गई। बात समझ में आ गई। याद रखो हुदूद के मसले में हद को जारी करना यह भी कजा का हिस्सा है। आम मामलात के बरखिलाफ हुदूद के मसले में हद का नाफिज करना यह भी कजा का हिस्सा है। एक तो चार गवाह आए फिर काजी ने फैसला कर दिया कि इस आदमी का हाथ काट दिया जाए, यह है काजी का फैसला। इसके बाद अब उस गवाह का हाथ काटा जाएगा। याद रखो ये जब गवाह का हाथ काटना है यह भी काजी के फैसले का हिस्सा है, यह भी काजी के फैसले का हिस्सा है। जैसे गवाही देर से आई थी तो काजी फैसला ही नहीं कर सकता था, इसी तरह अगर हद के कायम करने में देर हो गई तो हद को नाफिज करना भी तो कजा यानी काजी के फैसले का हिस्सा था, तो यहां भी काजी के फैसले में ताखीर हो गई, लिहाजा अब हद साकित हो जाएगी। तवज्जो है, फिर सुनो, वो हुदूद जो खालिस अल्लाह का हक है उनके अंदर अगर गवाही देर से आए तो गवाही कबूल नहीं की जाती, फैसला ही नहीं किया जा सकता वहां
जी।
तो मालूम हुआ गवाही में ताखीर हो जाए तो कजा नहीं, कजा कजा का क्या माना, काजी का फैसला, तो कजा नहीं। और यहां पर हद को नाफिज करना यह भी किसका हिस्सा है, कजा का, तो लिहाजा अगर हद के नाफिज करने में भी ताखीर हो गई तो यूं समझो ताखीर हो गई, अभी तक कजा नहीं, अभी तक काजी का फैसला नहीं हुआ, तो हद साकित हो जाएगी। बात समझ में आ गई। देखिए भाई कहते हैं सुम तकादुमु कमा यमनाउ कबूल शहादत फिल इब्तिदाई, फिर पुराना होना जैसे ये कबूल शहादत को मना करता है फिल इब्तिदाई, इब्तिदा में, अगर बात पुरानी हो जाए तो फिर इब्तिदा के अंदर ही गवाही कबूल नहीं की जाएगी। तो कहते हैं सुम तकादुमु कमा यमनाउ कबूल शहादत फिल इब्तिदाई, फिर पुराना होना जैसे ये इब्तिदा के अंदर कबूल शहादत से मानेअ है, उसको मना करता है, यमनाउल इकामता बादल कजाई इंदाना, इसी तरह पुराना होना ये हद को कायम करने से भी मना करता है, बादल कजाई काजी के फैसले के बाद, काजी के फैसले के बाद अगर हद के कायम करने में भी जमाना ज्यादा गुजर गया तो आप हद भी कायम नहीं की जा सकती, साकित हो जाएगी। फिर तर्जमा देख लीजिए, सुम तकादुमु कमा यमनाउ कबूल शहादत फिल इब्तिदाई, फिर पुराना होना जैसे इब्तिदा के अंदर मना करता है शहादत को कबूल करने से, तो यमनाउल इकामत बादल कजा इंदाना, तो इसी तरह पुराना होना काजी के फैसले के बाद हद के कायम करने को भी मना करता है, इंदाना हमारे नजदीक, खिलाफन ले जुफरा रहिमहुल्लाह, द खिलाफ इमाम जुफर रहमहुल्लाह के, वो फरमाते हैं कि जब एक दफा काजी ने फैसला कर दिया अब चाहे हद के जारी करने में ताखीर ही क्यों ना हो जाए हद कायम की जाएगी। हम कहते हैं नहीं, काजी के फैसला करने के बाद अगर हद में ताखीर हो गई तो फिर भी हद साकित हो जाएगी। हद तलाउ हरबा बादा माजूरी बाजुल हद दी, सूरत यह मसलन किसी को हद जिना लगाई जा रही है और वो गैर मोहसन है, गैर शादीशुदा है, तो उसकी सजा 100 कोड़े हैं, उसको कोड़े लगाए जा रहे थे, अभी 20-30 कोड़े लगे थे कि अचानक वो भाग गया, भाई भाग गया और पता ही नहीं चला किधर गया, फिर उसके बाद वो एक दो माह के बाद वो पकड़ा गया, तो कहते हैं अब बात पुरानी हो चुकी है लिहाजा अब हद साकित हो गई है, अब हद जारी नहीं की जाएगी। कहते हैं हत्ता लौ हरबा बादा माजूरी बाजुल हद्दी, यहां तक कि वो शख्स जिस पर हद थी अगर वो भाग गया बादा माजूरी बाजुल हद्दी, बाद इसके कि जब उसको कुछ हद लगा दी गई थी, सुम उखिजा बादा मा तकादमा जमानो, फिर उसको पकड़ लिया गया बाद इसके कि जब कुछ जमाना पुराना हो गया था, इन्हें एक दो माह बाद पकड़ा गया, तो ला युकामु अलैहिल हद्दु, तो उस पर हद कायम नहीं की जाएगी, लिअन्नल इम्ज़ा अमीनल कजाई, इम्ज़ा भाई ज़ाद के साथ है, इम्ज़ा का माना है नाफिज करना, लिअन्नल इम्ज़ा, इसलिए क्योंकि हद को नाफिज करना, मीनल कजाई ये भी कजा में से है, ये भी काजी के फैसले का हिस्सा है। इधर देखो जब गवाही में देर हो जाए तो काजी फैसला कर ही नहीं सकता, इसी तरह अगर हद के वसूल करने में देर हो गई तो भी गोया काजी के फैसले में देर हो गई। तो कहते हैं लि अनल इम्ज़ा अमीनल कजाई, इसलिए क्योंकि हद का नाफिज करना यह भी कजा में से है, यानी काजी के फैसले का हिस्सा है, यानी उसी का ततिम्मा है, हद जब नाफिज करेंगे तो काजी का फैसला पूरा होगा। तो कहते हैं लि अनल इम्ज़ा अमीनल कजाई, इसलिए क्योंकि हद को नाफिज करना यह काजी के फैसले में से है, फी बाबिल हुदूदी, हुदूद के बाब में, हर जगह ऐसा नहीं है, सिर्फ हुदूद के बाब में इम्ज़ा जो है यानी हद को नाफिज करना यह भी कजा ही का हिस्सा है। भाई आगे देखिए, वक्त तलफू फी हद तकादुमी, भाई मैंने आपको बतलाया था कि कितना जमाना गुजर जाए तो बात पुरानी हो जाती है, मैंने बताया बाज़ फुकहा क्या फरमाते हैं 6 माह, और इसी की तरफ इशारा है जामे सगीर की इबारत में भी, जामे सगीर की इबारत इन्होंने जिक्र की थी कि वह इदा शहीदा अलैही शुहूद बिसरिकतिन और बिशुर्बि खमरिन और बिज़िनान बाद हीन, इन हीन का लफ्ज वहां जिक्र था और हीन का लफ्ज मुतलकन जिक्र हो बगैर नीयत के तो इससे क्या मुराद होता है, छह माह की मुद्दत मुराद होती है। तो इसलिए बाद फुकहा ने कहा छह माह की मुद्दत होगी, छह माह गुजर जाए तो ये बात पुरानी हो गई, लेकिन आपको साहिब हिदाया बतलाएंगे कि ज्यादा सही कौल यह है कि एक माह गुजर जाए तो बात पुरानी हो गई। तो कहते हैं वक्त तलफू फी हद तकादुमी, और फुकहा ने इख्तिलाफ किया है पुराना होने की हद में। वह अशारा फिल जामी सगीर इला सित्तति अशहरीन, और इमाम मोहम्मद रहमला ने जामे सगीर में इशारा फरमाया है छह माह की तरफ। फइन नहु काला, इसलिए क्योंकि जामे सगीर में उन्होंने फरमाया है बादहीन, ये बादहीन फरमाया है। वहां कदा अशारा तहावी रहमहुल्लाह ताला, और इसी तरह इमाम तहावी हमला ने भी इशारा फरमाया है, यानी उन्होंने भी छह माह की तरफ इशारा फरमाया है। वह अबू हनीफत रहिमहुल्लाह ताला लम युकद्दिर फी जालिका, कद्दर युकद्दिर तकदीर का माना मुकर्रर करना भी, और कद्दर युकद्दिर तकदीर का माना अंदाजा लगाना भी। तो मौका महल के मुताबिक जो तर्जमा मुनासिब बनता हो वो करेंगे भाई। तो कहते हैं वह अबू हनीफा तरहमुल्ला, और इमाम साहेब जो हैं लम युकद्दिर फी जालिका, उन्होंने कोई हद मुकर्रर नहीं फरमाई। वफव्वज़हू इला रायिल काजी फी कुल्ल असरीन, और उन्होंने सुपुर्द किया है इसको हर जमाने के अंदर काजी की राय के। तो कहते हैं वफव्वज़हू इला रायिल काजी फी कुल्ल असरीन, और इमाम साहेब ने इसको हर जमाने के अंदर काजी की राय के सुपुर्द किया है कि हर जमाने का जो काजी है उसकी राय के मुताबिक अमल किया जाएगा। वान मुहम्मदिन रहिमहुल्ला, और इमाम मोहम्मद रहमला से रिवायत है कि अन्नहु कद्दरहु बिशहरिन, कि उन्होंने इसका अंदाजा लगाया है एक महीने के साथ कि एक महीना गुजर जाए तो बात पुरानी हो गई। लिअन्नमा दूनहु आजिलुन, इसलिए क्योंकि महीने से जो कम है आजिलुन वो तो जल्दी है। वह हुआ रिवायत अन अबी हनीफा व अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाह, और यही एक रिवायत है इमाम अबू हनीफा रहमल्ला से और इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह से। वह हुआ असहु, और यही कौल ज्यादा सहीह है कि एक महीना गुजर जाए तो बात पुरानी हो गई। वहादा इदालम यकुम बैन अलकाजी व बैनहुम मसीरतु शहरीन, और ये उस वक्त है यानी गवाही का पुराना हो जाना उस वक्त है जब काजी और गवाहों के दरमियान एक माह की दूरी ना हो। अगर एक माह की दूरी है फिर उजर मौजूद है। कहते हैं वहादा इदालम यकुम बैन अलकाजी व बैनहुम मसीरतु शहरीन, और ये उस वक्त है जब काजी और गवाहों के दरमियान एक माह की मुसाफत न हो। अम्मा इदा काना, और अगर इतनी मसाफत है यानी एक माह की मसाफत है तो तुकबलु शहादतुहुम, तो फिर उनकी गवाही कबूल की जाएगी। लिअन्न अल-मानि बुअदुहुम अनिल इमामी, इसलिए क्योंकि मानिया जो था वो इमाम से इनकी दूरी थी, वो इमाम से दूर रहते थे इतनी जल्दी आ ही नहीं सकते थे। फला यतहक्ककु तोहमतु, तो तोहमत नहीं पाई जाएगी, जब दूर रहते हैं तो तोहमत नहीं पाई जाएगी, दिलों में बदगुमानी नहीं आएगी। वत्तकादुमु फी हद्दि शुर्बि कज़ालिका, भाई आगे हद्दि शुर्बि खमरा का बाब आने वाला है, उसके अंदर भी याद रखो किसी पर शराब पीने की वजह से हद जारी की जाएगी तो वहां भी जमाने को देखा जाएगा। अगर बात पुरानी हो गई तो फिर वो हद शुरबे खमर भी साकित हो जाएगी, शराब पीने की हद भी साकित हो जाएगी, फिर गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा। तो वहां पर कितना जमाना गुजरे कि कहेंगे बात पुरानी हो गई, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह वहां भी फरमाते हैं अगर एक महीना गुजर गया तो बात पुरानी हो गई, एक महीने से कम है तो फिर हद जारी की जाएगी। जबकि शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हद शुर्बे खमर के अंदर अगर शराब पीने वाले के मुंह से शराब की बू खत्म हो गई तो बात पुरानी हो गई। मालूम है एक आध दिन के अंदर ही हद लग सकती है, उसके बाद बात पुरानी हो गई फिर गवाही नहीं सुनी जाएगी। तो कहते हैं व तकादुमु फी हद्दि शुर्बि कज़ालिका इंदा मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह, और शुर्बे खमर की हद के अंदर जमाने का पुराना होना इसी तरह है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक, यानी एक महीना है। व इंदहुमा युकद्दरु बिज़वालिर राइहति, और शेखैन रहमहुमल्लाह के नजदीक उसका अंदाजा लगाया गया है बू के खत्म होने के साथ कि शराबी के मुंह से शराब की बू खत्म हो जाए। अला मा यति फी बाबिही इंशा अल्लाह ताला, उस वजह से जो इसके बाब में आ जाएगा इंशा अल्लाह ताला, वो वजह आगे जिक्र करेंगे साहिब हिदाया भाई। आगे देखिए वह इदा शहीदू अला रजुलिन अन्नहु जना बि फुलानता व फुलानतु गाइबतुन फ इन्नहु युहद्दु व इन शहीदू अन्नहु सरिका मिन फुलानि व हुवा गाइबुन लम युक्ता। मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कि फुलानतु का लफ्ज गैर मुनसरिफ है, क्योंकि फुला और फुलानतु ये किनाया होते हैं किसी अलम से, तो ये अलम के दर्जे में है। तो यहां दो सबब आ गए, फुलानतु के अंदर एक तो अलमियत आ गई क्योंकि अलम के दर्जे में है, और दूसरी तानीस आ गए, तो ये गैर मुनसरिफ है भाई। सूरत मसला ये कि गवाहों ने गवाही दी कि ये जो फला आदमी है इसने फुलानी औरत के साथ जिना किया है। अब वो मर्द तो काजी के पास मौजूद है लेकिन वो फुलानी औरत मौजूद नहीं, कहते हैं फिर भी इस शख्स पर हद जिना जारी कर दी जाएगी। और जबकि इसके मुकाबले में अगर गवाहों ने गवाही दी कि एक शख्स ने चोरी की है और हाल यह है कि वो जिसका माल चोरी किया गया था वो मौजूद नहीं, तो फिर इस सूरत में चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि चोरी के मसले में दावा जरूरी है और मालिक ही नहीं है तो दावा नहीं है, जब दावा नहीं है तो हद भी साबित नहीं हो सकती। तो कहते हैं वईदा शहीदू अला रजुलिन, और जब गवाहों ने गवाही दी एक आदमी के खिलाफ कि अन्नहु जना बि फुलानता कि इस आदमी ने फुलानी औरत से जिना किया है, वह फुलानतु गाइबतुन और हाल यह है कि वह फुलानी औरत जो है गाइब है, व इन्नहु युहद्दु तो इस आदमी पर हद जारी की जाएगी, व इन शहीदू अन्नहु सरिका मिन फुलानिन और अगर गवाहों ने गवाही दी कि इसने फुला आदमी से चोरी की है, वह हुआ गाइबुन और हाल यह है कि वो शख्स गाइब है यानी जिसका माल चोरी हुआ है वो जो माल का मालिक है वो गाइब है, लम युक्ता तो चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा। वल फर्क और फर्क यह है दोनों मसलों में कि अन्न बिल गैबतियन अदिमुद दावा कि गाइब होने से दावा मादूम हो गया, जब माल का मालिक गायब है तो दावा मादूम है और चोरी के अंदर तो दावा शर्त था भाई। तो कहते हैं वल फर्क और दोनों मसलों में फर्क यह है कि अन बिल गैबती यन अदिमुद दावा कि गैर मौजूदगी की वजह से दावा मादूम हो जाता है, वही शर्त उन फिर सरिकति दून जीना और दावा शर्त है चोरी में न के जीना में, व बिल हुजूरी युतवा हमुदा व शुभहती वला मोतबर बिल मोहूम। ये जगह अच्छी तरह समझ लें भाई, भाई याद रखो हुदूद जो है हुदूद शुबे की वजह से साकित हो जाती हैं, लेकिन एक है शुभहतु शुबा, शुबे का शुबा हो जाना उसकी वजह से हद साकित नहीं होगी। शुबे की वजह से तो हद साकित हो जाएगी लेकिन शुभहतु शुबा यानी शुबे का शुबा हो जाए तो इस सूरत में हद साकित नहीं होगी। और यहां पर भी शुबे का शुबा मौजूद है, चार गवाहों ने गवाही दे दी कि ये जो आदमी है इसने फुलानी औरत के साथ जिना किया था और वो फुलानी औरत यहां मौजूद नहीं, तो इस सूरत में हद जारी कर दी जाएगी। तो एतराज होता है कि यहां हद कैसे जारी की जाएगी, यहां शुबा मौजूद है, अगर वह औरत यहां मौजूद होती तो हो सकता है वो कह देती हमारा तो निकाह हुआ था जी। हमारा तो निकाह हुआ था और रात में पढ़ा था कि जानी और मजनिया दोनों का जिना पर इत्तेफाक हो फिर ही हद आएगी, अगर दोनों में से एक भी निकाह की बात कर दे तो हद साकित हो जाएगी। तो यहां पर भी शुबा आता है कि अगर वो औरत मौजूद होती वो शायद निकाह का दावा कर देती तो हद साकित हो जाती। तो जवाब उसका देते हैं साहिबे हिदाया कि भाई यहां पर शुबा होने का सिर्फ वहम है, शुबा होने का सिर्फ इहतमाल है, यानी ये शुबहतु शुबा है जी। नई बात समझ में आई, वो औरत अगर यहां होती और फिर वो निकाह का दावा करती तो फिर शुबे ने आना था, और अभी तो ना वो औरत है ना उसने कोई दावा किया है तो यहां कोई शुबा नहीं है, सिर्फ शुबे का एक इहतमाल है, सिर्फ शुबे का वहम होता है और वहमी चीज का कोई एतबार नहीं, और इसी को शुबहतु शुबा कहा जाता है कि शुबा होने का शुबा है यहां पर, शुबा है तो नहीं लेकिन शुबा होने का शुबा है यानी एहतमाल है। तो याद रखो हमेशा जगह जगह किताबों के अंदर यह जिक्र आएगा कि हद जो है शुबे से साकित होती है लेकिन शुबा तो शुबा की वजह से साकित नहीं होती। तो वहां इंसान जरा परेशान हो जाता है कि शुबा तो शुबा का क्या माना, तो वो साहिब हिदाया ने बयान फरमा दिया कि शुबा है नहीं लेकिन शुबा होने का इहतमाल है, वहम है, तो उसका कोई एतबार नहीं भाई। तवज्जो है, तो शुबा हो फिर तो मुतबर है लेकिन शुबे का सिर्फ एक इहतमाल है, शुबे का सिर्फ शुबा है तो इसका एतबार नहीं है, वरना तो हद कायम करने की कोई सूरत ही नहीं रहेगी। जहां शुबे का इहतमाल भी आ जाएगा आप कहेंगे हद साकित हो गई, जैसे यहां पर चार गवाह भी मौजूद हैं, वो आदमी भी मौजूद है, हां वो औरत होती तो उसमें जरूरी तो नहीं था वो कह देती कि मैंने निकाह किया है, ये भी तो हो सकता है वो निकाह की बात ही ना करती। तवज्जो है, तो अगर वो औरत होती तो फिर शुबा हो सकता था, जब वो औरत नहीं है तो शुबे का सिर्फ एहतमाल है, शुबे का सिर्फ एक वहम हो रहा है, यानी शुभ तो शुभा है, शुबा होने का शुबा हो रहा है तो ये इसका कोई एतबार नहीं। तो शुभ तो शुबा कहें तो बात जरा मुश्किल लगती है, है ये शुबा तो शुबा लेकिन दूसरे लफ्जों में यूं कहो शुबे का एहतमाल है यहां पर और एहतमाल की तरफ तो नजर नहीं की जाएगी। तो कहते हैं वह बिल हुजूरी युतवहम दावा शुभहति, बिल हुजूरी और उस औरत की मौजूदगी की सूरत में युतवहम दावा शुभहति, शुबे के दावे का वहम होता है यानी शुबे के दावे का एहतमाल, अगर वो औरत होती और वो फिर दावा भी कर देती फिर शुबा आना था लेकिन फिलहाल तो शुबा नहीं, हां इस शुबे का इहतमाल है, अगर होती तो यह शुबा आ सकता था, मालूम है इस वक्त शुबा नहीं सिर्फ शुबे का इहतमाल है और इहतमाल शुबा की तरफ नहीं देखा जाएगा, यानी शुबा तो शुबा की तरफ नहीं देखा जाएगा भाई। तो कहते हैं वह बिल हुजूरी युतवहम दावा शुभहति, और उस औरत की मौजूदगी की वजह से शुबे के दावे का वहम होता है, वला मुतबर बिल मौहूमी, और मौहूम चीज का कोई एतबार नहीं यानी वहमी चीज का कोई एतबार नहीं, ये तो एक वहमी चीज है, यहां हकीकत में कोई शुबा मौजूद नहीं है भाई। वह इन शहीदों अन्नहु जना बिमरअतिन ला यारिफूनहा लम युहद्दत, सूरत है मसला ये कि चार गवाह है और उन्होंने गवाही दे दी कि ये जो आदमी है इसने एक औरत से जिना किया है, हम उस औरत को तो नहीं जानते हां इसको हम जानते हैं, तो क्या इस सूरत में हद आएगी या नहीं, कहते हैं नहीं सूरत में हद साबित नहीं क्योंकि हो सकता है वो इसकी बांदी हो सकता है वो इसकी बीवी हो भाई, तो जब तक औरत का नहीं पता जिना का होना यकीनी नहीं लिहाजा हद साकित हो जाएगी। तो कहते हैं वह इन शहीदों, और अगर गवाहों ने गवाही दी अन्नहु जना बिमरअतिन ला यारिफूनहा कि इस शख्स ने जिना किया है एक ऐसी औरत से जिसे वो नहीं जानते, लम युहद्दा तो इस शख्स पर हद नहीं आएगी, लिहतमाल अन्नहा मरअतुहु अव अमतुहु, इसलिए क्योंकि ये एहतमाल भी है कि हो सकता है वो उसकी बीवी हो या इसकी बांदी हो, बल हुआ जाहिर बल्कि यही जाहिर है, जाहिर यही है कि ये इसकी बीवी या बांदी होगी क्योंकि मुसलमान के हाल को खैर पर महमूल करना चाहिए भाई। वह इन अकर्र बिजालिका खुद, और अगर उसने खुद ये इकरार किया फिर हद लगाई जाएगी, उसने खुद इकरार किया कि काजी साहेब एक औरत के साथ मैंने जिना किया जिसे मैं नहीं जानता, जब ये खुद कह रहा है मैं नहीं जानता मालूम हो वो उसकी बीवी या बांदी नहीं है तो अब हद जारी की जाएगी। तो कहते हैं वह इन अकर्र बिजालिका खुद, और अगर उसने खुद इस बात का इकरार किया कि उसने एक ऐसी औरत से जिना किया है जिसे वो नहीं जानता तो खुद तो इसको हद लगाई जाएगी, लिअन्नहु ला यख्फा अलैहि अमतुहु अव इमरअतुहु, इसलिए क्योंकि उस पर तो उसकी बांदी या बीवी मख्फी नहीं है। चलिए बस भाई बात समझ में आ गई, हल हो गया, चलिए बस बेहादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।